তোমরা কিছু বলবো ভাবছি মহারাজ? আর অকিঞ্চন মহারাজ
সাতটা বেজে গেছে, আপনি একটু
হ্যাঁ
সাতটা বেজে গেছে, আপনি একটু বলে ছেড়ে দিন।
অজ্ঞান নিরান্ধস্য জ্ঞানঞ্জন শলাকয়া চক্ষুরুন্মীলিতাঙ্গেন তস্মৈ শ্রীগুরবে বঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্যৈব চ পতিতানাম পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো মহাবদন্দায় কৃষ্ণ প্রেম প্রদায়তে কৃষ্ণায় কৃষ্ণ চৈতন্য নাম্নে গৌরবিষে নারায়ণম নমস্কৃত্য নরম চৈব নরোত্তমম দেবীম সরস্বতীম ব্যাসম ততো জয়মিতি। কবি শ্রীমান তীর্থ মহারাজ জি নে শ্রী শ্রী বেদব্যাস জি কা চরিত্র ওর পূজ্যচরণ সনাতন গোস্বামী জি কা চরিত্র বর্ণন কিয়া। ব্যাস জি গুরু হ্যাঁ, আর উনোনে যো কুছ দিয়া ইসকা উনোনে বর্ণন কিয়া। উনকা জন্ম ইস মথুরাপুরি মেহি কৃষ্ণ গঙ্গা ঘাট পর হুয়া থা। उनके पिता का नाम पराशर ऋषि था। नॉट हियरिंग वही नॉट साउंड शुड बी तो साउंड बढ़ा दो। साउंड व्यास जी का जन्म कृष्णगंगा मथुरापुरी में हुआ। उनकी माता जी का नाम सत्यवती था। यद्यपि वे एक अप्सरा की लड़की थी किंतु उनको पाला पोसा एक धीवर ने, मल्ला ने, नौका खेलने वाले। एक दिन पराशर ऋषि जमुना को पार करना चाहते थे। शाम को उस समय वह धीवर नाव खेलने वाला बोट वाला बहुत थक गया था, इसलिए अपनी युवा बेटी को कहा तुम ऋषि को पार कर। तो उसने पराशर ऋषि को बोट में बैठा करके पार करने लगी। बीच में टापू था जंगल, बस वहीं पर नौका लगी और पराशर ऋषि ने उसके तरफ में देखा और देखते देखते साथ ही साथ में 16 बरस की आयु जैसे बड़े सुंदर सुडौल भगवान के कलावतार सत्यावेश अवतार व्यास जी जन्म दिया। उन्होंने कहा तुम डरो मत, ये मैं कुमारी अवस्था में कैसे पुत्र हो गया, तुम्हारा राज विवाह शांतनु राजा से होगा, राज महिषी तुम बनेगी, राज रानी कोई चिंता मत करो। और ये व्यास तुम्हारा लड़का साधारण नहीं है, भगवान का सत्तावेश अवतार, बहुत से काम इसके द्वारा हुए। इसके बाद व्यास जी ने अपनी मैया को कहा माता जी जब जब कोई जरूरत पड़े हमें बुलाना और आपकी इच्छाओं को हम पूर्ण कर। इसलिए जब जब माता की जरूरत होती थी व्यास जी को बुलाती थी, वो आकर के सभी काम पूरा कर देते। महाभारत युद्ध अभी तैयारी चल रही थी, दुर्योधन को बहुत समझाया, धृतराष्ट्र को समझाया, कृष्ण तक भी आए समझाए, किंतु होनी तो होगी। कृष्ण ही काल के रूप में है, इसलिए जब कृष्ण ही की बात नहीं मानी तो व्यास की क्या बात मानी। इसलिए वो महाभारत युद्ध को रोक नहीं सके। जैसे भी हो, व्यास जी ने जगत का क्या कल्याण किया है श्रीमंत महाराज जी ने सब बतलाया। भागवत एक ऐसा ग्रंथ लिखा जो केवल परमहंसों का प्रिय है, साधारण लोगों का नहीं। और उसमें सारे जगत की सर्वकालीन समस्त समस्याओं का उसमें समाधान है। भूत भविष्य वर्तमान जितने काल में जितनी समस्याएं हो सकती हैं सबका सार्वकालीन सर्व समाधान श्रीमद् भागवत में है। लोग यदि इसका पालन करें तो समस्त समस्याओं का साधन संभव कर हो सकता है। उसमें उन्होंने लिखा तस्मात् गुरुं प्रपद्ये जिज्ञासु से शब्दे परिचय निष्ठा ब्रह्मण्युपसमास तस्मात् इसलिए। किस लिए? पहले श्लोक में बतलाया गया है इसलिए जब संसार के लोग इसको अच्छी तरह से अनुभव कर सकें, संसार में सुख नहीं है। जितना भी कोई भी हो, बुढ़ापा आएगी और शरीर को छोड़ना होगा। जब से सृष्टि हो रही है तब से हम जन्म ले रहे हैं, तब से मरण होता है और फिर संसार चक्र में उलझे रहते हैं, वैराग्य नहीं होता। इसलिए कहते हैं यदि किसी को अनुभव हो जाए जी ये संसार दुखपूर्ण है, जैसे महाप्रभु जी गया में ईश्वरपुरी पास से मिले तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने यही देह आमी तुम्हारे संसार समुद्र से उद्धार। महाप्रभु जी भगवान कह रहे हैं हमारी शिक्षा के लिए। इसलिए संसार को मत समझो, जब दिल्ली का लड्डू है मत समझो। बहुत से ब्रह्मचारी सन्यासी फिर से संसार में जाना चाहते हैं किंतु उसमें कोई सुख नहीं है, ये तो कुकर सुकर गधे को भी लाभ है। इसको अच्छी तरह से समझ लो। शरीर हाड़ मांस रक्त पैखाना पेशाब की थैली है, एक दिन जरूर बूढ़ी होगी, बूढ़ा होगा सर, एक दिन छोड़ दे। संसार का कोई भी चीज साथ नहीं जाएगा, एक पैसा पाउडी भी नहीं जाएगा, ये समझ लो। जब ये समझ में आ जाएगा तो वो सद्गुरु के पास ले जाएगा, दूसरा नहीं। सनातन गोस्वामी जेल से छुटकारा ला लिया और गंगा को पार किया, जंगल में पहुंचे। जंगल के ज्योतिषियों ने, डाकुओं ने, उनके ज्योतिषी ने बतलाया ये आ रहा है, इसके पास में 7 सोने की मोहर है, उन्होंने सनातन गोस्वामी को बड़ा आदर किया, उनके साथ में एक सेवक था, बड़ा आदर किया। सनातन गोस्वामी ने सोचा इस जंगल में किस लिए हमारा इतना आदर कर रहा है, कुछ कारण है, पैसे का लो तो हो ना हो हमारे किसान को के पास में कुछ न कुछ जरूर है। जब वहां पहुंचे सारे भोजन की व्यवस्था सब कुछ सोने इत्यादि की व्यवस्था की। सनातन गोस्वामी ने ईशान से, क्या तुम्हारे पास में कुछ है? तो उसने कहा कि 6 मोहर है सोने की, अरे ये काल है इसलिए आज रात में हमें काट देंगे, तुम किस लिए साथ में लाए, दे दो हमें। 1 बचात रुपये उसने रख लिया और तब सनातन गोस्वामी ने 6 मोहर को उनको दे दिया। डाकू, डाकू बोले जैसे ओहो भगवान ने हमारी रक्षा की, आज रात में तुम लोगों को हम मार डाल इन पैसे से, अच्छा हुआ जी तुम अपने आप दे गया। किंतु एक बात समझो, 1 मोहर उसके पास में और है जो छिपाया है। जैसे भी हो हम तुमको जंगल से रात ही रात में पार कर देते हैं, बस जंगल को से उसने पार कर दिया। जब पार करके क्या हुआ, पार कर दिया तब सनातन गोस्वामी ने शाम से पूछा तुम्हारे पास और कुछ है? 1 मोहर आपकी सेवा के लिए रख रखा है। उन्होंने कहा जी तुम ये मोहर लेकर के घर लौट जाओ, तुम हमारे साथ में जाने लायक नहीं है, वैराग्य नहीं हुआ है, गुरु के पास में जाने के लिए वैराग्य चाहिए। अभी तुम सोचते हैं जो रुपया हमारी रक्षा करेगा, खबरदार ऐसा नहीं, तुम जाओ। और रोने लगा तभी उसको, और महाप्रभु के पास में बिना पैसे कौड़ी के गए कैसे, या सब लोग जानते हैं, और कैसे महाप्रभु के चरणों में वे शरणागत हुए। इसलिए तस्मा गुरु प्रपत्ति, इसे जब इतना ज्ञान हो तब वैराग्य होने के बाद में सदगुरु के पास में जाएगा, गुरु जी हमारा कल्याण कैसे होगा, आत्यंतिक कल्याण, रुपये पैसे से मैं नहीं सुखी होऊंगा, आप हमारा आत्यंतिक कल्याण कैसे होंगे बताएं। तब वो सदगुरु कैसा होगा, शब्द ब्रह्मणी निष्णा वेद पुराण उपनिषद गीता भागवत इत्यादि में वो प्रवीण होगा, पारंगत होगा, जिसे वो शिष्यों के सारे संदेह को मिटा सके और भगवत उपलब्धि कुछ हो, भगवत उपलब्धि हो जो, और संसार से कुछ विरक्त भी हो, ऐसा होने पर गुरु है। और जो लोग इस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं और शिष्य करते हैं, सब शिष्यों का पाप उनके अंदर में प्रवेश करेगा और उनका कोई कल्याण नहीं होगा। इसलिए खूब सावधान हो करके सनातन गोस्वामी जैसा हो करके गुरु हैया तारो यही थे, इसके पहले नहीं, खूब सावधान होकर के चलना चाहिए। सनातन गोस्वामी जैसे 1 पैसा नहीं 1 कंबली थी उसको भी दे करके 1 छेड़ा कम था फटा हुआ गुदड़ी उसे और महाप्रभु से दे करके, इस तरह से गुरु पदाश्रय करके तब फिर हमारा कल्याण हो सकता है। ऐसे ही वेदों में भी कहा गया जस्य देवी पराभक्ति जथा देवी तथा गुरु। जैसे भगवान में प्रीति है ठीक वैसे ही गुरु में हो तो सारे शास्त्रों का तात्पर्य हृदय में आ जाता है, समझ लेता है। गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा तो पीछे होती है, पहले गुरु की होती है अवश्य। इसलिए सब शास्त्रों में कहा गया ये पहले गुरु की पूजा और तब भगवान की पूजा, पहले गुरु का अर्चन तब फिर भगवान का अर्चन। इस तरह से गुरु निष्ठा भक्ति की बैकबोन है, रीढ़ है। जैसे रीढ़ नहीं रहने से शरीर काम नहीं देगा, ऐसे गुरु निष्ठा जिसकी जितनी अधिक है वो भगवान का अधिक भक्त होगा। इसलिए गुरु निष्ठा रखो, गुरु में विश्वास रखो और जिससे कि तुम्हारा कल्याण हो। जिसका गुरु में ही विश्वास नहीं है तो फिर वो क्या कर सकता है, उसको भक्ति कदापि नहीं हो सकती। इसलिए सनातन गोस्वामी जी के उपलक्ष्य में और व्यास जी के उपलक्ष्य में गुरु पूजा होती है और उनकी गद्दी पर बैठकर जो विश्व में भगवान की कथाओं का तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं व्यास के रूप में, उस गुरु की पूजा भी व्यास की ही पूजा है। इस तरह से गुरु पूजा होती है और हम लोगों को उसी रूप में गुरु निष्ठा रख करके आगे बढ़ना, गुरु से कोई कपटता इत्यादि नहीं रखनी चाहिए। बस आज यही पर वक्तव्य शेष है। गौ प्रेमानंदे कीर्तन कर।